ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
तो ये परस्पर विचार करने से ज्ञान वृद्धि होती. तो बड़े बड़े मिलकर के कथा बदाम, ये कथा बाद कथा. और एक होता है जल्प कथा. जल्प कथा में तो दूसरे को परास्त करना, जितना शास्त्रार्थ कितने विद्वान परस्पर प्रश्न पूछो उत्तर दे, कोई हार जाएगा कोई जीत लेगा, ये अभिप्राय. अब दूसरे को खंडन करके अपने पक्ष रखना, दूसरे को परास्त करना, तो जीत लेना. जैसे भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र को हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जो हार जाएगा उसी से बनेगा. तो मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, मीमांसक थे, और ये गए थे उसको परास्त करेंगे, हमारा शिष्य बनेगा, तो हमारे वास्तव पर वार्तिक लिखेगा. कुमार भट्टन को भेजा था, उनके पास गए थे. तो शास्त्रार्थ हुआ, शास्त्रार्थ होने में मध्यस्थ एक होना चाहिए, नहीं तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, किसको नहीं मानेगी. तो मध्यस्थ कौन होगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती, उनको मध्यस्थ बना गया. तो कितने शास्त्रार्थ करते समय कितने निश्चित है कि इसमें मध्यस्थ बनेगी अपनी पत्नी. धर्म के ऊपर जो विचार करते हैं, पत्नी भी पति को पक्षपात कर नहीं करेगी, निर्णय करेगी, करके उसको बना गया आचार्य भगवपाद में बना, ठीक है. और वो भी कार्य व्यस्त होने से इतने पहले नौकर जाकर रखकर नहीं, सब अपने करना पड़ता. अतिथि कोई आए खिलाना भोजन बनाना है तो बड़े बड़े लोग उस टाइम करते थे, अभी भी आपको मालूम है बड़े बड़े लोग करते थे. तो कार्य व्यस्त रहते, दिन के साथ रात चले गया, कितने दिन तक पता नहीं. वो कहां बैठी कर सुने की निर्णय करने के लिए, दोनों गले में माला चढ़ा दी. जिसके माला सूख जाएगा वो मैं सूख जाएगी, वो हार गया. वो अपने काम करती, रोज बुलाती, आए आप आए महाराज, आप भिक्षा के रहे. और पति बोलते आप आओ भोजन के लिए. दोनों को क्या बुलाती? पति को बुलाती अभी भोजन के लिए आप आओ. और इनको बोलते महाराज आप भिक्षा के लिए आए. सन्यासी लोग भिक्षा करते हैं, उनको नहीं कहते भोजन. अपने भी काम आश्रम में घंटे होते, वो कब पूछेंगे भिक्षा कितने बजे? भोजन करते तो हम इसको भिक्षा शब्द से ही कहते. कहीं भी भिक्षा तो है, साक्षात कोई देता है किसी प्रकार का भिक्षा तो हमारे पास, भोजन भिक्षा ही. इसे सन्यासी महात्मा को कहते भिक्षा की कितने बजे यहां भिक्षा होती, भोजन कितने बजे नहीं, कितने बजे भिक्षा. तो उनको बुलाते आए भिक्षा के लिए, और पति को बुलाते आए खाने के लिए. शास्त्रार्थ पर जब जीत गए आचार्य भगवत पाद, मंडन मिश्र हार गए. अभी क्या हार जाने से क्या होंगे? उनके शिष्य बनेंगे, सन्यासी बनेंगे. अभी देवी बुलाती है, अभी दोनों आए भिक्षा के लिए. अर्थात दोनों सभा बाबा नहीं है, पति को भी कह दिया अभी दोनों भिक्षा के लिए आए. अर्थात स्वीकार कर लिया, ये हार गए तो शिष्य बन गए तो बाबा बन जाएंगे. वो शास्त्रार्थ था जल्प कथा. और एक कथा है वित्तंडा कथा. वित्तंडा कथा अपना कोई मत नहीं, कोई कुछ कहता है उसका खंडन करना, कुछ कहता तो खंडन करना, अपने कुछ हमारा कोई मत नहीं, जो कहता है उसमें खंडन करना. और वित्तंडा कथा कहते हैं तो जो मुमुक्षु है उसके लिए ये तर्प जल्प कथा वित्तंडा कथा करनी नहीं चाहिए, वाद कथा करनी चाहिए. तो तीनों मिलकर का भी वाद विचार करेंगे. तथेतिह समुपविविशो सह प्रवाहनोजैविरुवाच भगवन्तावग्रे वदताम् ब्राह्मणैर्वदत्वर्वाचं श्रोष्यामीति. तीनों हम कहती बहुत अच्छा है, बैठो बैठ के विचार करके अच्छा है. सब प्रवाहर जैविली जो था जीवल का पुत्र प्रवाहर प्रवाहन कहा भगवंतो अग्रे वदताम. हाय भगवान है आप दोनों पूज्य है, पहले आप दोनों बोलिए, आप दोनों परस्पर बोलिए. और ब्राह्मणोर वदतोर वाचम श्रोष्याम. आप दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों बोलिए, आप दोनों बोलते समय दोनों के शब्द में सुनूंगा. आप दोनों ब्राह्मण आप बोलो मैं सुनूंगा, इसे कहने का अभिप्राय स्वयं जैविली ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, राजा थे. नहीं तो ये यदि ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण है, तो कहेंगे आप दोनों ब्राह्मण, आप कहो दोनों के मैं सुनूंगा. ब्राह्मण तो तुम हो, तुम दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों ब्राह्मण, आप दोनों कहो मैं सुनूंगा. अर्थात स्वयं ब्राह्मण नहीं थे, तो आप दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों प्रश्न उत्तर कीजिए मैं सुनूंगा. भगवान बदता ब्राह्मण वदतर वाचम श्रोष्यामी. और इस कहते आपके शब्दों के मैं सुनूंगा, आप दोनों बोलो आप दोनों के शब्द को मैं सुनूंगा, शब्द को सुनूंगा कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थ विशेष नहीं है, विशेष अर्थ नहीं, शब्द को मैं सुनूंगा अर्थात विशेषता इनको अधिकार था, बाद में पता चलेगा। आप दोनों बोलो अर्थ को है या नहीं हो, दोनों का कैसे आप विचार करते मैं सुनूंगा, ऐसे होता है। अच्छा तुम बताओ क्या जानते हो, पहले जो बोलते थे गलती बोलता है तो पहले सुन लो, और कुछ गलत बोला तुरंत गलती कहेंगे तो आगे उसकी सुनेंगे किसी, इसे सुनने के लिए कहे तुम क्या जानते हो बोलो, वो पूरा बोल दिया, बोलने के बाद फिर उसको पहले से बताएं क्या तुम्हारी गलती है। कहते आप दोनों पहले प्रश्न उत्तर करो, ये नहीं होता है कि तीनों परस्पर ये कुछ कहेगा ये कुछ कहेगा ये कुछ कहेगा, ऐसा नहीं, प्रश्न उत्तर दोनों में हो, फिर दोनों में होने के बाद कहें निर्णय नहीं हुआ कुछ रह गया फिर तीसरा कहेंगे, तो एक नियम से नीति मर्यादा से ही बात होती है, नहीं कि तर्क वितर्क झगड़ा, ऐसा नहीं, परस्पर कहेंगे निर्णय करना है, तत्व बुभुस तत्व निर्णय करने के लिए कथा है, तो क्या आप दोनों विचार कीजिए, तो कहने के बाद पहले वो शीलक पहले प्रश्न करने लगा, सशीलक शालावत्य शैकितायनम दालभ्यम उवाच हंतत्वा पृछानीति पृछेति होवाच। और शास्त्र में मर्यादा है, या तो कहीं से विद्या प्राप्त करना है तो शिष्यत्व में जाकर के ग्रहण करना है, और शास्त्रार्थ होना है तो आगे आएगा वृद्धारण्य के में, शास्त्रार्थ में अपने को आना है, आता है तो दूसरे को पूछना, कहीं के अपने को मालूम नहीं दूसरे को पूछे तुम क्या पढ़ते हो इसका अर्थ बताओ, वो नहीं बता पाएगा, बोला क्या पढ़ते हो तुम, भाई बोला हमको थोड़ा बता दीजिए, है इसे थोड़ी बताते, अब उनको नहीं आता है, ये नहीं बोले हमको नहीं आता है, बोले क्या पढ़ते हो, नहीं अरे क्या पढ़ते हो, फिर वो कहेगा थोड़ा हमको बताए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बताते, ऐसे कदम नहीं बताएंगे, कारण क्या है, दूसरे को खाली विजित करने के लिए ऐसे करते हैं, काशी में ऐसे कोई कोई पढ़ करके शास्त्रीय आचार्य तक पहुंच गए, आता कुछ नहीं, और थोड़े कुछ पढ़े लघु पढ़ने वाले पूछेंगे उसमें उकाल अजर सदीर्घ पड़ता है अच क्यों कहा गया बोलो, वो तो कुछ मालूम नहीं कहाँ अच उसको दिखता नहीं अच कहा है, उकाल हो झस में अच वहां है ये भी उसको पता नहीं, अच क्यों कहा गया वो क्या पता चलेगा, क्या पढ़ते हो, फिर बेचारा सोचेगा हमको नहीं आता है तो बहुत आता है, ऐसा नहीं होता है, यदि कुछ पूछते हैं तुमको मालूम हो और नहीं बता पाए तो उस पूछता है तो बताओ, तभी आगे आएगा शास्त्रार्थ में कुछ पूछता है नहीं जानता है आगे हम लोग बोलता तुम इसका उत्तर दो, नहीं बोल पाते सही गिरी ऐसे वृद्धारण्य में, तो यहां भी पूछने के लिए नियम में आपसे पूछू बाद कथा होने पर मैं कुछ पूछना चाहता हूं, अरे आपस में थोड़ा कुछ पूछू, तो कहते सहशीलक शालावत्य स्वीकृतायन को बोला हम तो आप पूछा नहीं थी, मैं आपसे पूछो तो दोनों बात करेंगे तो मैं पूछू तो वो क्या हो पूछे ही थे बाजो पूछो डाल भे ने क्या पूछो अभी कौन प्रश्न करेगा शिला का प्रश्न करेगा दाली बेसी का सामनो गति रीति स्वर इति होवाच स्वर से का गति रीति प्राण इति होवाच प्राण से का गति रीति अन्नमिति होवाच अन्न से का गति रीति आप इति होवाच ये शाम की गति क्या है शाम शब्द से उद्गित है ना शाम का अवय उद्गित इसे एक देश उद्गित है कि अवयव ओंकार को उद्गित कहा गया पट के अवयव जल गया तो कहते पट जल गया यहां भी शाम के अवयव उद्गित उसको भी शाम शब्द से कहा पट का अवयव जल गया तो कहे पट जल गया शाम के अवयव जो उद्गित वो भी शाम है पांच भागे तो यहां शाम शब्द से उद्गित कहा उद्गित यहां उपास्य है इसे उद्गित शाम की क्या गति है कहां गति का तो आश्रय कहां आश्रित है उसका आश्रय कौन है ये प्रश्न हेतु होवाच ये उत्तर दिया स्वर ही तो होवाच कहा स्वर ही है उसकी गति है स्वर में आश्रित है क्योंकि स्वरात्मक स्वर बोलना होता है स्वरात्मक शाम तो स्वर उसका आश्रय परायण गति है फिर कहा स्वर से का गति रीति फिर शिला को पूछते स्वर की क्या गति है क्या परायण है क्या आश्रय तो अल्भ उत्तर देते प्राण ही तो हुआ प्राण से ही ज्ञान किया जाता है तो प्राण उसका आश्रय प्राण से क्या गति रीति तो प्राण की क्या गति प्राण का क्या आश्रय तो उत्तर देते दाल भी उत्तर देता अन्न मित हो वाच अन्न में आशित है। तो फिर श्रीलक पूछता अन्न से कागत रीति अन्न का आश्रय क्या है, ये कहते आप ही तो होवाच अन्न का हो गया प्राण का आश्रय का अन्न, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो प्राण चले जाएगा और अन्न उसका बंधन कर। अन्न की गति हो गया जल, क्योंकि जल से अन्न उत्पन्न होता है, जल से रस भर करके अन्न होता है और जल उसका कारण है, इसे जल हुआ। आगे फिर श्लोक पूछता है अपां कागत रीति असौ लोक होवाच अमुष्य लोक से कागत रीति न स्वर्गम लोकम अति नये दीति होवाच स्वर्गम वयम लोकम सामा भी संस्थापयाम स्वर्ग संस्थापम ही सामेति अपां कागत रीति। श्लोक पूछता है जल की क्या गति है, क्या आश्रय है, तो दाल भी कहते असौ लोक ही तो वाचे वो स्वर्ग लोक जल वर्ष वृष्टि होती ऊपर से आता है जल वो लोक असौ लोक इतो वाचो। फिर श्रीलोक बोलता है अमुष्य लोगों से क्या गति, वो स्वर्ग लोगों का क्या आश्रय है, स्वर्ग लोग तो जल का आश्रय उधर आया किन्तु उसका क्या आश्रय है क्या गति रीति। इतने कहने के बाद दाल भी कहता है न स्वर्गम लोकम अति नएद स्वर्ग लोगों का आश्रय क्या पूछते हो, स्वर्ग तो सबका आश्रय हो गया, स्वर्ग लोग से बढ़कर के आगे कुछ नहीं पूछो। कोई भी स्वर्ग को अतिक्रम करके दूसरा आश्रय का चिंतन नहीं करे, इसका तो स्वाश्रय हो गया, जल का आश्रय स्वर्ग हो गया। स्वर्ग को अतिक्रम करके स्वर्ग लोग को अतिक्रम करके दूसरा कोई आश्रय है शाम का, दूसरा कोई ऐसे चिंतन नहीं करे, कोई है नहीं। स्वर्गम वयम लोकम शाम अभी संस्थापयाम स्वर्गलोक हम शाम शब्द से कहते, शाम से प्रारंभ हुआ, शाम का आश्रय स्वर, स्वर का आश्रय प्राण, प्राण का आश्रय अन्न, अन्न का हो गया जल, जल का आश्रय हो गया स्वर्ग, और स्वर्ग का क्या आश्रय बना परंपरा से शाम का आश्रय स्वर्ग है। हम स्वर्ग को ही शाम शब्द से कह करके उसकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग ही शाम का सब का आश्रय प्राण है पराशय स्वर्ग संस्थापन ही शाम इति, क्योंकि शाम को स्वर्ग कह करके स्तुति करते हैं। स्वर्ग ही सबका आश्रय, शाम का अत्यंत सबसे आश्रय कौन हुआ स्वर्ग, एक आश्रय का दूसरा तीसरा होकर के अंत में स्वर्ग में, स्वर्ग में सब आश्रित है, स्वर्ग का क्या आश्रय पूछना। तंग शिलक शालावत्यश्चैकितायन दाल्भ्य मुवाचा प्रतिष्ठित वे किलते दाल्भ्य शाम यस्तेतरे ब्रूया मूर्धाते विपतिशती मूर्धाते विपते दीति। अभी तो शिलक प्रश्न कर रहा था चैकितायन, अभी तंग शिलक शालावत्य चैकितायन शिलक शालावत्य प्रश्न कर रहा था, अभी चैकितायन दाल्भ्य से कहा चैकितायन दाल्भ्य मुवाच अप्रतिष्ठित वे किलते दाल्भ्य शाम हे दाल्भ्य तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठित उसकी अंतिम प्रतिष्ठा तुमको मालूम नहीं, एक एक प्रतिष्ठा कहकर बीच में छोड़ दिया उसका उसकी प्रतिष्ठा तुमको मालूम नहीं, उस स्वर्ग का आश्रय तुम नहीं जानते हो, शाम का आश्रय कहकर स्वर प्राण अन्न आदि कहकर के स्वर्ग तक आया स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं कह दो तो तुम्हारे शाम प्रतिष्ठित नहीं है, स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते तो अप्रतिष्ठा हो गया। ऊपर ऊपर से लेकर के अंत में प्रतिष्ठा तो कोई होना चाहिए, अरे बीच में छोड़ दिया उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा है ते तो तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठा का, तो तुम शाम की वास्तव प्रतिष्ठा को नहीं जानते हो, अप्रतिष्ठित तुम्हारा शाम है ये दाल्भ्य से कहा। यस्तु एतर ही ब्रूयात इस समय तुम शाम के विषय में उद्गान करते उद्गात आदि ये जानते हैं, सब लोग हमको निपुण कहते हैं किंतु तुम शाम की प्रतिष्ठा नहीं जानते हो, तुम्हारी भ्रांति है, अभी तक तुमको इतने मालूम नहीं स्वर्ग तक पहुंचा स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते हो। यदि इस समय कोई सहन नहीं करके तुमको असही स्नोकर कोई कहे क्योंकि तुम ये अपराधी दोष है दोषी है, स्वर्ग को प्रतिष्ठा कर तो वास्तव स्वर्ग प्रतिष्ठा नहीं, स्वर्ग की भी प्रतिष्ठा है, स्वर्ग का भी आश्रय है, तुम नहीं जानकर वहां तक मानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो कोई यदि सही सुनाई कर तुम बोले तुझे मूर्धाते विपत्ति से आती थी, मूर्धाते विपत्ति दी थी, तुम्हारा सिर गिर जाएगा, इस आदि कोई कहेगा तुम्हारा सिर गिर जाएगा। अर्थात मैं नहीं कहता हूं, इधर भय नहीं करो, मैं नहीं कहता तुम्हारा सिर गिर जाए, किंतु इसी दोष में कोई यदि कोई कहे तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाता, सिर गिर जाता। अर्थात तुम जानना चाहिए, ये तो सिर गिर जाने का है क्या, नहीं जानते कोई कहेगा तुम नहीं जानते, भ्रांत है, सब सभा के बीच अपमानित हो जाते, सिर झुक जाता है, और सत्य संकल्प होने से कभी गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। अभी जब दोनों का विचार चल रहा था, दोनों विचार में एक कहने के बाद दूसरा प्रश्न जो कर रहा था, ये कहता ठीक नहीं जानते, तो तुरंत दालभ्य कहता है, हंता हम एतद् भगवतो वेदानीति विधित होवाच अमुष्य लोक से कागत रीति अयं लोक इति होवाच अस्य लोक से कागत रीति न प्रतिष्ठां लोकम अतिनयदिति होवाच प्रतिष्ठां वयम लोकम सामाभि संस्थापयाम प्रतिष्ठा संस्थापम हि सामेति। अब दाल्भ्य पूछा, दाल्भ्य किसे पूछेगा, शीलक से, किसे शीलक से पूछता है, हंत इरानी अहम एतद् भगवत वेदानी, इसको मैं आपसे भगवत का तो पूज्य आपसे मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए, प्रश्न करते आप मुझे बताई थी, कहते विधि थे वाच, ठीक है समझ लो पूछो। फिर ये पूछते हैं दालभ्य, अमुष्य लोक से क्या गति, तो स्वर्ग लोक की क्या गति है, स्वर्ग का आश्रय क्या है, देखो तो अयम लोक इति वाच, ये लोक है, इस लोक में योग याग करते हैं, दान करते होम करते, तो स्वर्ग लोक में स्थित उनको पोषण करते हैं, स्वर्ग में जो देवता लोक है उनको ये लोक में ही पोषण करते है, ये आश्रय, इसी लोक में याग दान होम आदि करेंगे तो उस लोक को पोषण करते है, अतः प्रदानम देवा उपजीवंती, यहां जो देते देवता लोग उसको आश्रय करते हैं, और यहां जो कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाता है, खाली स्वर्ग इसे अपने आप थोड़ी ही बैठा, सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएगा, और जो कर्म करते देवताओं को देता है, जिया लोग उसकी गति है। अमुष्य लोगों से अयम लोक इति होवाच, फिर दावी पे पूछा अस्य लोगों से क्या गति रही थी, फिर इस लोगों का क्या आश्रय, स्वर्ग से ये लोग इस लोग का क्या आश्रय, इसे पूछने पर शिलोक कहता है न प्रतिष्ठा लोकम अति नये, ये तो प्रतिष्ठा है पृथ्वी, इसको अतिक्रम करके दूसरे कोई लोक प्रतिष्ठा नहीं, सोचो ये लोक प्रतिष्ठित है, इसका क्या आश्रय पूछना, ये नहीं इति होवाच प्रतिष्ठा वयम लोकम साम अभि संस्थापयाम, यही पृथ्वी प्रतिष्ठा है, यही लोक है, इसको साम की प्रतिष्ठा हम कहते, ये अभि संस्था संस्था पृथ्वी में स्थित है, ये सारा पृथ्वी सारे पृथ्वी में सब कुछ है, सब लोकेश में प्रतिष्ठा है, यही प्रतिष्ठा है, साम की भी यही प्रतिष्ठा है, उसके और प्रतिष्ठा नहीं पूछ रहा, इसकी हम स्तुति करते, यम वे रथंतरम, ये पृथ्वी रथंतर है, यही सब की प्रतिष्ठा है, सवाच वयम लोकम सामयती। इतने कहने पर जो पहले पूछा था प्रवाहन, दोनों को कहा था तुम ब्राह्मण दोनों परस्पर करो, पहले तो शीलक ने पूछा, दालभ्य उत्तर दिया था, फिर दालभ्य उनके पूछा, शीलक थोड़ा अधिक तो जानता था दालभ्य से, किन्तु यहां तक वो पहुंच गया, पृथ्वी सब की प्रतिष्ठा है। इतने कहने के बाद जो क्षत्रिय राजा था प्रवाहन, तंग प्रवाहनो जैविलुर्वाच अंतवद्वी किलते शालावत्य साम येतर ही ब्रूयान मूर्धाते विपति सती मूर्धाते विपते दीति हंताहम एतद् भगवतो वेदानीति विद्धित होवाच। प्रवाहन जैविली कहा, अंतवद्वी किलते शालावत्य साम, हे शालावत्य आपका जो साम अंतवत अंतवाला विनाशी है, उसकी प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो, शीलक शालावत्य शालावत्य शीलक, हे शालावत्य शीलक तुम्हारे साम अंत वाले विनाशी हो जाएगा, क्योंकि उसको इसकी प्रतिष्ठा नहीं जानते हो, यस्तु इतरी ब्रूयात मूर्धाते विपतिष्ठति, यदि कोई तुम्हारे भ्रांति को देख करके असहिष्णु होकर के ऐसे बोल दे तुम्हारा सिर गिर जाए तो तुम्हारा सिर गिर जाता। मूर्धाते विपते थी ये अर्थात मैं नहीं कहता हूं किंतु कहने पर यहां शंका करते हैं। कोई कहे अथवा नहीं कहे अग्नि को स्पर्श कर से अग्नि जला देती है। कोई कहेगा तो जलाएगी नहीं तो नहीं जलाएगी। यदि दोष किया दोष के कारण तो दोष है तो अपने आप सिर गिर जाना चाहिए। कोई कहेगा तुम सिर गिर जाए तो गिरेगा नहीं तो नहीं गिराई क्यों तो कहते सब दोष होने पर भी कुछ निमित्त भी है। यहां ऐसा श्रुति में कहा गया अज्ञान भी हो उसके बाद जानने वाला कोई उसके अज्ञान को समझ करके तुम नहीं जाने कर को भ्रांत हो। जानने वाला यदि कहे तो सिर गिरेगा यानी कि खाली भ्रांति मात्र से सिर गिर। सिर गिरने का निमित्त केवल भ्रांति नहीं भ्रांति हो और जानने वाला उसको कहे कि तुम्हारी भ्रांति ऐसा कहे असहिष्णु होकर कहे और असहिष्णु होकर कब कहेगा यदि शिष्यत्व में उपस्थित नहीं है तर्कादि करता है ये कहेगा तुम गलत कह दो सिर गिर जाएगा तब गिरेगा। खाली भ्रांति मात्र से नहीं तो निमित्त जैसे अग्निस्पर्श से गर्म लगता है यहां केवल इतने से नहीं भ्रांति हो को असहिष्णु होकर कहे तभी होता है तो ये निमित्त सापेक्ष है। अब फिर प्रवाहल जयमिनी से शालावत्य सिलक ने कहा मैं आपसे सुनना चाहता हूं भगवत वेदानी थी कहते विधि उपाच ठीक समझ लो। अभी प्रश्न करता है शिलक शालावत्य जो पहले प्रश्न किया था दालिव्य से फिर दालिव्य उसको पूछा तो चुप हो गया उसको नहीं वो दालिव्य को चुप करके स्वयं दिया फिर अपने उसको चुप करके जब रहा प्रवाहल ने कहा ठीक नहीं अभी अस्य लोक ये प्रवाहल जयवीर से पूछ रहा है शालावत्य अस्य लोक से कागत रीति आकाश इति होवाच सर्वाणी भू इमानी भूतान्य आकाशादेव समुत्पद्यंत आकाशम प्रत्यस्तंग्यंत आकाशो हे वेभ्यो जायान आकाश परायणम। तो अनुमति लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपसे जानना चाहता हूं तो उन्होंने कहा विद्धि जानो ग्रहण करो। तो पूछा अस्य लोक से कागति रीति ये स्वर्ग का तो ये लोक आश्रय हो गया थी इस लोक फिर क्या गति है कहा क्या आश्रय है। तो जैविनी कहता है प्रवाहल कहता है आकाश ही तो बस आकाश इसका आश्रय है क्यों सर्वानी हवा इमानी भूतानी आकाशादे वो समुत्पद ले ये सारे भूत भौतिक प्रपंच आकाश से ही उत्पन्न होते हैं। आकाशम प्रति अस्तंगयंती आगे लीन आकाश में लीन हो जाते हैं आकाशो ही एवं एभ्यो जायान सारे भूत से आकाश उत्कृष्ट है जायान सबसे बड़ा है महत्तर आकाश परायणम सबका सबकी प्रतिष्ठा तीनों काल में आकाश ही प्रतिष्ठा है। श्रुति में विभिन्न स्थानों में विभिन्न शब्द प्रयोग किया गया किस शब्द का क्या अर्थ है क्या तात्पर्य है श्रुति तात्पर्य निर्णय करने के लिए जहां संभव नहीं होता है व्यास जी ने मीमांसा दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन जिसको कहते ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र में इसी किसी की स्थल पर सूत्र बना करके इसका स्पष्टीकरण किया इसी के ऊपर ब्रह्मसूत्र में आया विचार अंत में आकाश ही सबका सब की प्रतिष्ठा क्योंकि आकाश से ही सारे भूत की उत्पत्ति आकाश देव इमानी भूतानी कह रहे सारे भूत आकाश से उत्पन्न हुए सारे भूत के अंदर आकाश है या नहीं आकाश के साथ सारे भूत आकाश से उत्पन्न होंगे हो सकता है आकाश के साथ सारे भूत भौतिक प्रपंच आकाश से ही उत्पन्न हुए आकाश में स्थित हो गया आकाश है ये सारे भूत तो उत्पन्न हुए आकाश से आकाश भी पांच भूत आ गया फिर पांच भूत में आकाश आ गया इन सबकी उत्पत्ति आकाश कैसे होगी इसलिए आकाश शब्द का अर्थ ये भूत आकाश नहीं है यहां सर्वत्र नहीं यहां आया आकाशस्तलिंगात ब्रह्म सूत्र है आकाशस्तलिंगात आकाश ब्रह्म है क्यों उसका लिंग ज्ञापक शब्द है क्या ज्ञापक शब्द यतो वा इमानी भूतानी जायन्ते येन यातानी जीवन्ति यत प्रयंत अभिसंभिषन्ति सारे भूत की उत्पत्ति जिससे होती वही ब्रह्म है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करें, पहले प्रथम सूत्र हुआ। ब्रह्म क्या है उसका लक्षण बताने के लिए ब्रह्म सूत्र में द्वितीय सूत्र है जन्माद्यस्य यत, जन्मादि अस्य यत, जिससे अस्य जगत, इस जगत का जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता है वही ब्रह्म है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म है, ये लक्षण बताया। जगत उत्पत्ति के भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति कारण ब्रह्म है, ये ब्रह्म का लक्षण बताया। यहां आकाशी सारे भौतिक उत्पत्ति कही गई, आकाशादेव इमानी भूतानी समुत्पद्यन्ते, सारे भूत आकाश उत्पन्न होते और आकाश में लीन होते हैं, आकाश इनका आश्रय परायण, उत्पत्ति स्थिति प्रलयतीनो आ गया। आकाश उत्पन्न है, आकाश में लीन भाई का आकाश में स्थित, आकाश परायण, आकाश सारे भूत भौतिक प्रपंच का उत्पत्ति स्थिति कारण ब्रह्म है। इसलिए यहां जो आकाश शब्द आया आकाश इतिवाच, यहां आकाश का अर्थ ब्रह्म पर ब्रह्म है। ये ब्रह्म सूत्र आकाश तल्लिंगात, ये सूत्र है क्योंकि सारे भूत की उत्पत्ति आकाश के साथ, सारे भूत की उत्पत्ति आकाश से नहीं हो सकती, भूत आकाश से, कि यहां आकाश परमात्मा है, कि परमात्मा के लिए आकाश शब्द आया ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया। सैष परोवर्यानुद्गित सैषो अनंत परोवर्यो हास्य भवती परोवर्यसु लोकांजयति, ये तदेव विद्वान परोवर्यान समुद्गितम उपास्ते।